बौद्धिक पक्ष। सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों से जो उत्कीर्ण मुद्राएं मिलती हैं वे इस बात की निश्चित प्रमाण हैं कि इसमें लिपि का प्रचलन था, किंतु दुर्भाग्यवश लिपि के अपठित होने के कारण यहाँ के निवासियों के बौद्धिक पक्ष के विषय में बहुत कम ज्ञात है। अधिकांश विद्वानों ने उनकी लिपि को चित्ताक्षर या पिक्टोग्राफिक बताया है। इसके लगभग 400 अक्षर ज्ञात हैं। लिपि चिन्हों में स्पष्टता, विस्तार और विभिन्नता है। सामान्यतः यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। बीबी लाल ने कालीबंगन की खुदाई से दो टेराकोटा केक्स या मृतपिंड ऐसे प्राप्त किए हैं जिन पर सैंधव लिपि में लघुलेख खुदे हुए हैं। इनके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि लिपि की लेखन दिशा दाएं से बाएं ओर की ही थी। कहीं कहीं पंक्ति बदले जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस पद्धति को ब्रिस्टोफेडन कहा जाता है। इस लिपि का भाषा निर्धारित कर पाना दुष्कर है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत तथा द्रविड़ कहते हैं। एस आर राव ने इसे पढ़ लेने का दावा किया है, किंतु बीबी लाल आदि विद्वान उनके पाठ को संदिग्ध मानते हैं। हाल ही में भागलपुर बिहार में एक परिवहन अधिकारी एनके वर्मा तथा बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण पाठक ने इस लिपि को पढ़ लेने की बात कही है। वर्मा के अनुसार उन्हें यह सफलता 14 वर्षों के गहन अध्ययन व शोध के बाद प्राप्त हुई है, किंतु इसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं है। सैन्य भवनों के निर्माण की सुनिश्चित योजना को देखते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे ज्यामिति जियोमेट्री के कुछ सिद्धांतों से अवश्य ही परिचित रहे होंगे। उनके भार माप के पैमाने सुनिश्चित थे। बाटों में अद्भुत समता दिखाई देती है। माप तौल में द्विचर प्रणाली बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता था, जिसके अनुसार 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320, 1600 तथा 3200 तक की संख्याओं को नियोजित किया जाता था। बाट के रूप में 16 अथवा उसके आवर्तकों मल्टीपल्स का व्यवहार होता था। यहाँ के लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। अंत्येष्ट क्रियाएं। व्हीलर महोदय ने हड़प्पा से जो खोजें की हैं उनसे यहाँ के निवासियों के अंत्येष्ट संस्कारों के ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है। यहाँ से 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान R37 मिला है, जिससे स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कभी-कभी शवों को खुले मैदान में जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और इसके बाद बची हुई अस्थियों को समाधिस्थ करते थे। ऐसी आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर के स्थल से मिलते हैं। हड़प्पा की समाधियों में शव के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे गए मिलते हैं। यही सामान्य प्रथा प्रचलित होती है, किंतु कहीं कहीं इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। जैसे कालीबंगन में दक्षिण उत्तर, लोथल में पूर्व पश्चिम तथा रोपड़ में पश्चिम पूर्व दिशा में लिटाए गए शव प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरी प्रथा दाह कर्म भी प्रचलित थी। इसमें शव को जलाकर भस्मों को घड़े में रखकर समाधियों में गाड़ा जाता था। कभी कभी घड़ों के भीतर भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं, बर्तन, आभूषण आदि भी रख दी जाती थी। यह इस बात का द्योतक है कि इस युग के लोग मरणोपरांत जीवन में आस्था रखते थे। सुरकोटड़ा की खुदाई से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगन तथा लोथल से क्रमशः एक या तीन युगल समाधिकरण के उदाहरण भी मिलते हैं। राव इसे सती प्रथा का द्योतक मानते हैं, किंतु यह निष्कर्ष संदिग्ध है। तिथि। सैंधव सभ्यता की तिथि का निश्चित रूप से निर्धारण कर सकना कठिन है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निर्माण एवं पुनर्निर्माण के 7 स्तर प्रकाश में आए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कम से कम 1000 वर्षों तक इस नगर का अस्तित्व रहा होगा। जान मार्शल इसकी तिथि 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अर्नेस्ट मैके इसकी तिथि ईसा पूर्व 2800 से 2500 मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स 2700 से 2500 तथा सीजे सीजे गाइड ईसा पूर्व 2300 से 1750 मानते हैं। संपूर्ण उपलब्ध प्रमाणों की समीक्षा करने के पश्चात व्हीलर महोदय का निष्कर्ष अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत लगता है, जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसकी तिथि निर्धारित करने के पक्ष में है। व्हीलर ने यह निष्कर्ष पश्चिमी एशिया से मिली हुई 12 सैंधव मुहरों तथा ऋग्वेद में अंतर्निहित साक्ष्यों के आधार पर निकाला है। चूंकि सैंधव सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध सारगुन युग में ही अधिक था, अतः कहा जा सकता है कि यह ईसा पूर्व 2400 के लगभग स्थापित हुआ होगा। ईसा पूर्व 1500 के बाद की कोई मुहर मेसोपोटामिया के स्थलों से नहीं मिलती, अतः इसे सैंधव सभ्यता का अंत कहा जा सकता है। व्हीलर ने सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि का समर्थन ऋग्वेद के साक्ष्य से किया है। इससे पता चलता है कि इंद्र ने रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण उसे पुरंदर कहा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि वहां की निवासियों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि आर्यों ने उनके ऊपर आक्रमण कर नगरों को ध्वस्त किया तथा फिर भागते हुए नागरिकों की सामूहिक हत्या कर दी। अतः इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी कहा जा सकता है। भारत में आर्यों का आगमन ईसा पूर्व 1500 के लगभग हुआ, यही सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि मानी जा सकती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगन, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा तथा बाड़ा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, उसके आधार पर सैंधव सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व 2300 से 1700 तक निर्धारित होती है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। हड़प्पा सभ्यता का विनाश। हड़प्पा के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं। प्राचीन भव्य भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हैं। अंततो गत्वा द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। मार्शल मैके, एसआर राव आदि कई विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण हुआ। सैंधव नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे, जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। प्रत्येक बार भवनों का निर्माण ऊंचे धरातल पर किया गया। बाढ़ से प्रतिवर्ष लोगों की काफी क्षति होती होगी तथा वे अपना मूल निवास छोड़कर अन्यत्र बसने के लिए बाध्य हुए होंगे। मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई में विभिन्न स्तरों से बालू की परतें मिली हैं, जो बाढ़ के कारण ही जमा हुई थी। इसी प्रकार मैके ने चान्हूदड़ो की खुदाई में बाढ़ के प्रमाण प्राप्त किए हैं। उनका मत है कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए यहाँ के निवासी ऊंचे धरातलों पर जाकर बस गए होंगे। एसआर राव को लोथल भागत्राव में भी भीषण बाढ़ आने के संकेत मिलते हैं। बाढ़ में उनके समृद्ध बंदरगाह नष्ट हो गए होंगे तथा भवन ढह गए होंगे। बाढ़ के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी ने नदी तल को ऊंचा कर दिया होगा, जिससे संकट और बढ़ गया होगा। यद्यपि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के कारण सिंधु तट पर बसे कुछ प्रमुख नगर नष्ट हो गए, तथा इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि इस सभ्यता के जो नगर सिंधु अथवा नहर अन्य नदियों के तटों पर स्थित नहीं थे, उनका विनाश कैसे हुआ। अतः इस पूरी सभ्यता के विनाश के लिए हमें कुछ अन्य कारणों को भी उत्तरदायी मानना पड़ेगा। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों के अनुसार बाह्य आक्रमण का भी सैंधव सभ्यता के विनाश में प्रमुख हाथ रहा। पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया तथा वहां के लोगों की अत्यंत निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। केवल एक कमरे में 13 मृत व्यक्तियों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। एक गली से कुछ व्यक्तियों के अस्थि पंजरों के ढेर मिलते हैं, जिनमें स्त्रियों तथा बालकों के भी अस्थि पंजर सम्मिलित हैं। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने उत्खनन के दौरान एक टीले माउंट एबी के चारों ओर सुरक्षा भित्ति फोर्टिफिकेशन वाल का पता लगाया। साथ ही ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर तथा हरियूपिया शब्दों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। इस आधार पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत गढ़ने में उन्हें सफलता मिली, क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का विनाशक। उन्होंने फौरन यह घोषणा कर दी कि सरसरी तौर पर इंद्र, जो आर्यों के प्रतीक थे, सैंधवपुरों के विनाश के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हरियुपिया का तादाम्य हड़प्पा से स्थापित करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों ने ईसा पूर्व 1500 के लगभग अचानक आक्रमण करके सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया तथा वहां के नागरिकों को मार डाला। किंतु अब आर्य आक्रमण का सिद्धांत कल्पना की उपज सिद्ध हो गया है। मोहनजोदड़ो के जिन नरकंकालों का विद्वानों ने उल्लेख किया है, वे न तो एक ही स्तर के हैं और न ही वह इस सभ्यता का अंतिम स्तर है। ये कंकाल ऊपरी स्तर से भी नहीं मिलते। इन पर शारीरिक घाव के चिन्ह बहुत कम हैं। कुछ के मस्तक पर कटने के ऐसे निशान हैं जो अंशतः भर पाए गए हैं। इनसे सूचित होता है कि चोट लगने तथा मृत्यु के बीच काफी अंतराल था। पुनश्च जिस स्तर से ये कंकाल मिलते हैं वहाँ अथवा उसके बाद के स्तरों से युद्ध में प्रयुक्त होने वाली कोई भी सामग्री, बाण, भाला, फरसा, कवच आदि नहीं प्राप्त होती है। कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें से अधिकांश की मृत्यु प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियों से हुई जान पड़ती है। अतः आर्यों द्वारा सैंधव वासियों पर आक्रमण कर उनकी सामूहिक हत्या किए जाने की बात पुष्ट नहीं होती। जहाँ तक हरियुपिया के हड़प्पा से तादम्य का प्रश्न है, इसके लिए दोनों शब्दों में मात्र ध्वनि साम्य के अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं है। अतः अब आर्यों को सैंधव सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिकी पुराविद रिचर्ड एच मीडो ने भी स्वीकार किया है कि 1921 ईस्वी से आज तक मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि ये नगर आक्रमणकारियों द्वारा विनष्ट किए गए। बाढ़ तथा बाह्य आक्रमणों के साथ साथ विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के विनाश के पीछे कुछ अन्य कारण भी खोज निकाले हैं। इनका सारांश इस प्रकार है, सुने। जो प्रथम वर्ग के अंतर्गत है, आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा इन क्षेत्रों में घने वन स्थित थे। धीरे धीरे ईंट पकाने तथा मकान बनाने के लिए जंगलों की कटाई की गई तथा जमीन के ऊपर घास की छाया समाप्त होती गई। इस कारण पानी बरसना काफ़ी कम हो गया तथा इससे कृषि की पैदावार घट गई होगी। बड़े पैमाने पर वनों के कट जाने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तथा यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई होंगी तथा सैंधव नगरों का विनाश हो गया। जो दूसरा वर्ग है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के पीछे, वह यह कि भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ। जल प्लावन के कारण जमीन दलदल तथा कीचड़ युक्त हो गई, यातायात बाधित हुआ एवं पैदावार घट गई। इस कारण लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जा बसे तथा क्रमशः सभ्यता का विनाश हो गया। इसी प्रकार H.T. लैम्ब्रिक तथा माधव स्वरूप वत्स जैसे विद्वान सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। वत्स के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण संभव हुआ। G.F. डेल्स के अनुसार कालीबंगन का विनाश घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। नदियों द्वारा इस प्रकार मार्ग बदल देने के पीने तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया और जलीय व्यापार ठप्प पड़ गया, जो अंततः सैंधव नगरों के पतन में सहायक हुआ। जो अगला वर्ग है, यह K.U.R. कैनेडी का मत है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंधव निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए। इन आकस्मिक बीमारियों ने उनके जीवन का अंत कर दिया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। जो अगला वर्ग है, उसमें कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण निरूपित करते हैं। सैंधव नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया, विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप भी समाप्त हो गया तथा उसमें ग्रामीण संस्कृति के चिन्ह अस्पष्ट होने लगे। व्हीलर ने इस सभ्यता के उत्तर काल में पतन के लक्षणों का निरूपण करते हुए बताया है कि प्राचीन बड़े भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए तथा मकानों को बनाने के लिए पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। जो अगला वर्ग है, यह एक रूसी विद्वान जो एम दिमित्री देव हैं, उनके अनुसार सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट जो अदृश्य गाज के माध्यम से हुआ। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को पूर्णतया विषाक्त कर वायु दूषित कर देता है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से प्राप्त नरकंकालों की दशा तथा भीषण अग्नि से पिघले पाषाण अवशेषों से दिमित्रियेव ने निष्कर्ष का समर्थन भी होता है। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के विस्फोट की ओर संकेत किया है जो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों ने मिलकर सैंधव सभ्यता को समाप्त कर दिया। स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था, अतः इसके लिए किसी कारण विशेष को उत्तरदायी ठहराना समीचीन नहीं होगा। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, दूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट के फलस्वरूप इस सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा नगरीकरण का अंत हुआ। उल्लेखनीय है कि अभी हाल में गुजरात के कच्छ तथा अन्य भागों में आए भूकंप से जो भारी तबाही हुई है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में समृद्ध सैंधव नगरों का विनाश भूकंप के प्रयोगों से भी हुआ होगा। सैंधव सभ्यता की देन। पर्वती भारतीय सभ्यता के अधिकांश तत्वों का मूल हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में दिखाई देता है। सैंधव सभ्यता की खोज ने हमारे इतिहास को एक सातत्य प्रदान किया है तथा इसकी प्राचीनता को ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 2500 तक पहुंचा दिया है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि आर्यों के आगमन के समय तक लगभग ईसा पूर्व 1500 भारतीय संस्कृति के इतिहास में 1000 वर्षों का व्यवधान है, किंतु सैंधव सभ्यता ने इसे हटा दिया है। पुराणों में भारत का जो प्रारंभिक पारंपरिक इतिहास वर्णित है, वह प्रलय के बाद से प्रारंभ होकर महाभारत युद्ध लगभग 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चूंकि सैंधव सभ्यता प्रलयोत्तर है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सैंधव सभ्यता से लेकर महाभारत युद्ध तक की ऐतिहासिक परंपराओं में एक सातत्य है। भारतीय हिंदू सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक पक्षों का आदि रूप हमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त हो जाता है। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हम चातुर्वर्ण व्यवस्था के बीज सैंधव सभ्यता में पाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने सैंधव समाज को चार वर्गों में बांटा है: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का पूर्वज कह सकते हैं। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में हम पाते हैं कि कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य आदि का संगठित रूप से प्रारंभ सैंधववासियों ने ही किया, जिसका विकास बाद की सभ्यताओं में हुआ। यहीं से निवासियों ने बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो बाद की सदियों तक विकसित होता रहा। भारतीय आहत मुद्राओं पर अंकित कुछ प्रतीक सैंधव लिपि के चिन्हों जैसे हैं, जबकि सांचे में ढालकर तैयार की गई मुद्राएं अपने आकार प्रकार के लिए सैंधव मुद्राओं की ऋणी हैं। आहत सिक्कों की मानक माप सैंधव बाटों की माप से मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों के बर्तन, मिट्टी की वस्तुओं आदि पर अंकित कुछ चिन्ह, आकृतियां, प्रतीक आदि पंजाब से ईसा पूर्व की प्रारंभिक सदियों की वस्तुओं पर अंकित मिलते हैं। सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव हिंदू धर्म तथा धार्मिक विश्वासों पर दिखाई देता है। मार्शल ने उचित ही सुझाया है कि हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों का आदि रूप हमें सैंधव धर्म में प्राप्त हो जाता है। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं। सुने, प्रथम, सैंधव धर्म में मातृ देवी का प्रमुख स्थान था। इसी का विकसित रूप बाद में शाक्त धर्म के रूप में दिखाई देता है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे मातृ पूजन की जो परंपरा छोड़ी, उसे भारतीय लोगों ने शक्ति देवी, ग्राम देवता आदि के रूप में स्वीकार किया तथा वह आज तक सर्वोपरि देवी के रूप में विद्यमान है। दूसरा, सैंधव धर्म में जिस पुरुष देवता के अस्तित्व मिलते हैं, उसे ऐतिहासिक काल के शिव का आदि रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में हिंदू धर्म में इसे ही शिव का प्रतीक मान लिया गया। सैंधव मुद्राओं पर योगासन में बैठे हुए देवता का चित्र मिलता है। इसका विकास कालांतर में दक्षिणामूर्ति रूपी शिव तथा योगी रूपी बुद्ध की मूर्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। सारनाथ में प्रवचन देते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां इसी प्रकार की हैं। सैंधव प्रदेशों में दाढ़ी युक्त नग्न पुरुषों की कुछ मृण मूर्तियां मिली हैं। ये खड़ी मुद्रा में हैं, पैरों के बीच थोड़ा अंतर है तथा भुजाएं शरीर के दोनों ओर समानांतर हैं। इस मूर्ति का विकास बाद में जैनियों के कायोत्सर्ग मुद्रा की मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिनमें ध्यानावस्थित तीर्थंकरों को इसी प्रकार दिखाया गया है। मथुरा संग्रहालय में तीर्थंकर ऋषभदेव की जो मूर्ति स्थापित है, वह इसी मुद्रा में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैव धर्म की भांति बौद्ध तथा जैन धर्मों का आदि रूप भी हमें सैंधव सभ्यता में ही मिल जाता है। तीसरा जो है, सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। कालांतर में हम पाते हैं कि बौद्ध तथा हिंदू दोनों ही धर्मों में पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। बरहुत, सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों में अश्वत्थ पीपल बताया है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम पुराणों में वर्णित है कि जो लोग अश्वत्थ पर जल चढ़ाते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देववास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। यह विचार हिंदू धर्म ने सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया। जो चौथा है, सैंधव सभ्यता में विभिन्न पशुओं की धार्मिक महत्ता थी। कालांतर के हिंदू धर्म में भी हमें पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी ऋषभ तथा भैंसा को पवित्र मानते तथा उनकी पूजा करते थे। कालांतर में हिंदू धर्म में ऋषभ का संबंध शिव से जोड़कर उसे पूज्य माना गया। सैंधव शिव के साथ सिंह का भी अंकन है, जिसे हिंदू धर्म में दुर्गा का वाहन माना गया है। सैंधव मुद्राओं से पता चलता है कि नाग पूजा भी होती थी। हिंदू धर्म में आज भी नाग पूजा प्रचलित है। पांचवा जो है, सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक समारोहों के अवसर पर सामूहिक स्नान आदि का महत्व था। जैसा कि बृहत स्नानागार से पता लगता है कि यह भावना भी हमें बाद के हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। पूजा में धूप दीप का प्रयोग भी होता था। मातृ देवी की कुछ मूर्तियों के ऊपर दीप तथा धुएं के चिन्ह हैं, कुछ मुद्राओं पर अग्नि जलती हुई चित्रित हैं। ये सभी विधियां हिंदू उपासना में भी मिलती हैं। छठा जो है, सैंधव निवासी स्वास्तिक स्तंभ आदि प्रतीकों को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे। मुद्राओं पर इनके चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। स्तंभ की बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठा थी। सातवां जो है, सैंधव निवासी ताबीज धारण करते थे। इनके द्वारा वे भौतिक व्याधियां तथा पितात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार का अंधविश्वास आज भी हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। जो आठवां है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों आदि की मूर्तियों से स्पष्ट है कि वहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे तथा अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे। मार्शल का विचार है कि वे लकड़ी के मंदिर बनाते थे। कालांतर के पौराणिक हिंदू धर्म में मूर्ति तथा मंदिर उपासना के सर्वमान्य अधिष्ठान बन गए। अतः इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि कालांतर का हिंदू धर्म सैंधव धर्म का ही विकसित रूप है। धर्म के ही समान भारतीय कला के विभिन्न तत्वों का मूल रूप भी हमें सैंधव कला में दिखाई देता है। भारतीयों को दुर्ग निर्माण तथा प्राचीरों के निर्माण की प्रेरणा यहीं के कलाकारों ने दी थी। सुनियोजित ढंग से नगर बसाने का ज्ञान भी हमें हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। मौर्य कलाकारों ने स्तंभयुक्त भवन बनाने की प्रेरणा सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्तंभयुक्त भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद से भी पता चलता है कि अनारियों के पूर्व सतभुजी अर्थात 100 खंभे वाले थे, जिनका इंद्र ने भेदन किया था। यहाँ सैंधव दुर्गों की ओर ही संकेत है। लगता है इन्हीं के अनुकरण पर मौर्य कलाकारों ने चंद्रगुप्त के खंभों वाले राजप्रसाद का निर्माण किया था। मूर्तिकला का प्रारंभ सर्वप्रथम सिंधु घाटी में ही किया गया। वहाँ के कलाकारों ने पाषाण, ताम्र, कांसा आदि की जिन कलात्मक मूर्तियों का सृजन किया, उनका व्यापक प्रभाव बाद की हिंदू कला पर पड़ा। कुछ मुद्राओं पर वृषभ का अत्यंत सजीव तथा प्रभावपूर्ण चित्र मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक के समय केरमपुरवा वृषभ की आकृति इसी के अनुकरण पर बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति मिलती है, उसी के अनुकरण पर मथुरा की पाषाण वेष्टिनी पर यक्षी मूर्तियों का निर्माण हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक काल की प्रारंभिक मूर्ति कला सैंधव मूर्ति कला से प्रभावित है। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगर जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरी जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के क्षेत्र में सैंधव लोगों ने बाद की पीढ़ियों का दिशा निर्देशन किया है। नगर शासन के क्षेत्र में भी उनका योगदान है, क्योंकि उनके नगरों में स्वास्थ्य एवं सफाई आदि के लिए नगर महापालिकाओं का अस्तित्व अवश्य में रहा होगा। सैंधव निवासियों का शासन अत्यंत सुदृढ़ एवं एकात्मक था। कहा जा सकता है कि एक छत्र एवं सुदृढ़ शासन की प्रेरणा भारतीयों को उन्हीं से मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता में केवल नगरों का ही अंत हुआ, संपूर्ण सभ्यता का नहीं। इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी तथ्य केवल अवशिष्ट रहे, अपितु उन्हें आज भी भारतीय जनजीवन में न्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ देखा जा सकता है। अतः यह कहना समीचीन नहीं है कि आर्यों ने सैंधव सभ्यता का विनाश किया। सैंधव सभ्यता के अंत के पश्चात देश के विभिन्न भागों में कई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। इनमें सिंधु क्षेत्र में झूकर संस्कृति, पश्चिमी बंगाल में कब्रिस्तान एच संस्कृति, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में पांडुवर्णी मृदभांड वाली संस्कृति तथा गुजरात क्षेत्र में लाल चमकदार मृदभांड संस्कृति आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी की पहचान अनेक प्रकार के मृदभांडों के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में कई विकसित कृषि संस्कृतियां अस्तित्व में आईं। नगरीकरण प्रायः विलुप्त हो गया, जिसका पुनर्प्रारंभ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ।